हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत् वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खसादया, येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत कथाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं कुरुतु वाचालं, पंगु लंघयति किरा, यत् कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनधारिणं, परमानन्दमाधवं, श्री चैतन्यै ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, श्लोक संख्या 13। इन अत्यंत ही परम पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान के स्वरूप पर ध्यान लगाने की विधि बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए, भगवान के किस किस अंग का किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए, और उससे इस ध्यान करने से उस जीव का क्या लाभ होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक एक शुंगानि ध्यानो भावयेत् पादादि यावत्थसितं गदावृता जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुद्ध्यति धीर्यथा यथा। एकैक शुंगानि ध्यानो भावयेत् पादादि यावत्थसितं गदावृता जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा। एकैक शुंगानि ध्यानो भावयेत् पादादि यावत्थसितं गदावृता जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुद्ध्यति धीर्यथा यथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकैक शुंगानि ध्यानो भावयेत्। एकैक शो यानी कि एक एक करके या एक के बाद एक एक, ऐसा नहीं है जब भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान का ध्यान करना हो तो ऐसा नहीं कि बस भगवान को एक साथ एक टक देख लिया और निकलो यहां से। ये वास्तव में हमारे नेत्रों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने विग्रह सेवा स्वीकार की है, विग्रह के अंदर आकर विराजमान होना स्वीकार किया है। तो हमारे नेत्रों का जो विषय है, जैसे हर एक इंद्रिय का एक विषय होता है, नेत्रों का विषय है देखना। जब इंद्रिय किसी वस्तु को देखती है तो स्वतः उस वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। हम देखते हैं संसार में जो भी सुंदर वस्तु जब भी हमें दिखती है तो हमें ऐसा लगता है कि उसको प्राप्त किया जाए, क्योंकि ये भौतिक, हालांकि इस भौतिक जगत में सब कुछ अभद्र है, जिस जिस वस्तु और व्यक्ति को देखकर हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है वो वास्तव में हमारे लिए दुख का कारण बनता है। यही संस्पर्श जाबो का दुख योनय एवत है। वास्तव में यदि कुछ देखने लायक है तो वो भगवान की विक्रा, भगवान के दर्शन। जब हमारे नेत्र भगवान को देखते हैं तो वे कहते हैं, एक एक शुंगानि ध्यानो भावयेत्, यानी कि उनके एक एक अंग का दर्शन। अनुभावयेत का मतलब होता है ध्यान करो, एक एक इस तरह से करो, पादादि यावत्थसितं गदावृता। गदावृता का मतलब होता है ध्यान करना है, दर्शन करना है, तो इन नेत्रों को सफल करो और भगवान के दर्शन करो। कैसे शुरू करो? पाद आदि यानी पांव से स्टार्ट करो। सबसे पहले भगवान के चरण कमलों के दर्शन करो, नेत्रों को तब तक भगवान के चरण कमलों पर टिकाए रखो जब तक भगवान के चरण कमल हृदय में न चले जाएं। भगवान के चरणों पे जो तुलसी पत्र लगा हुआ है उसको नमस्कार करो हृदय से, जब भगवान के चरणों पर दृष्टि जाए तब भगवान के चरणों की महिमा को हृदय के अंदर स्मरण करो कि ये वही चरण है जिनसे स्पर्श करके साधारण जल गंगा जल बन जाता है और त्रिलोकी को पवित्र करने लगता है। ये त्रिलोकी करोड़ों करोड़ों वर्षों से गंगा जल में करोड़ों करोड़ अपराधी स्नान करते हैं और उनके अपराध क्षमन होते हैं, तो उन साक्षात उन चरणों का स्पर्श करके या दर्शन करके क्यों नहीं मेरे हृदय का अपराध, मेरे हृदय की मलिनता साफ होगी। तो भगवान के दर्शनों, भगवान के जब चरणों का दर्शन करें तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये वही चरण है जो कालिया के सिर पर नृत्य करते हैं और उसके सारे भय को समाप्त कर देते हैं। कालिया भयभीत था कि यदि मैं यमुना से बाहर जाऊंगा तो भगवान का वाहन गरुड़ मुझे खा जाएगा, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं कालिया, अब तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के इन निशान को देखकर कालिया तुझे कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो इन चरणों के निशान को, मेरे चरणों का स्पर्श पार कर तुम इतने धन्य हो गए हो कि वो अब उसको नमस्कार करेगा। तो जब वो इतने बड़े भय से सुरक्षित हो गया तो इन चरणों के संरक्षण में आकर हम क्यों नहीं सुरक्षित होंगे। वास्तव में जीव की सुरक्षा केवल भगवान के चरण कमलों में आकर शरणागत होने में है, क्योंकि जब जीव भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान के चरण कमल उस नाव की तरह है जिसमें चढ़कर ये भव सागर को पार करना अत्यंत ही सुगम हो जाता है। इसलिए भगवान के चरणों पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए और इसके बाद पादादि भावतथितम इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। भावत यानी जब तक ऐसे आगे ऊपर बढ़ना चाहिए, हसितम यानी भगवान के चरणों के ऊपर, फिर उनके चरणों के ऊपर जो पिंडलियां हैं उसके ऊपर, फिर भगवान की जांग के ऊपर, उसके ऊपर उठते 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 फिर भगवान की कटी, भगवान की कमर के ऊपर, फिर भगवान का वक्ष स्थल, ऐसे करते करते भगवान के मुखमंडल तक अपनी दृष्टि ऊपर करनी चाहिए। और प्रत्येक अंग, क्योंकि भगवान का प्रत्येक अंग जो है वो इतना मधुर है, मधुरम मधुरम, भगवान इतने मधुर हैं, इतने रसमय हैं, इतने आनंदमय हैं। हर एक भगवान के अंग को यहाँ पर बताया गया, एक एक कशोंगानी, भगवान के एक एक अंग को हृदय के अंदर स्थापित करना क्या फायदा होगा इससे। जितम स्तम स्थानम अपोहय धारियत, जिस जिस स्थान को भगवान के आप ध्यान करोगे, जितना जितना मन इन अंगों पर टिकाओगे उतना उतना क्या होगा, परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। धी कहते हैं बुद्धि को, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है। वास्तव में हमारे दुखों का कारण यही है, हमारे संताप का कारण यही है, क्योंकि ध्यान करते हैं भौतिक वस्तुओं का, प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक व्यक्तियों को, और बुद्धि इतनी मलिन है कि उन वस्तुओं और व्यक्तियों को जितना प्राप्त कर लेते हैं उतना उतना हृदय अशांत होता जाता है, मन उन सब वस्तुओं और व्यक्तियों के कारण ही दुखी होने लगता है। क्योंकि बुद्धि जब तक अपवित्र है, हृदय की मलिनता यही है कि कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। बुद्धि की मलिनता यही है कि भगवान के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं। तो बुद्धि, क्योंकि केवल दर्शन ही भौतिक वस्तुओं के होते हैं, श्रवण ही भौतिक वस्तुओं का होता है, इसीलिए भौतिक वस्तुओं की इच्छा होती है। लेकिन जैसे जैसे भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के चरण कमलों का, भगवान के एक एक अंग का दर्शन करेंगे तो क्या होगा, परम परम शुद्धति धीर यथा यथा। उसी तरह से जैसे जैसे बुद्धि के अंदर भगवान की इस स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा तो हमारी बुद्धि उतनी उतनी परम परम शुद्धियति शुद्ध होती जाएगी, और जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी तो हृदय भी पवित्र होता जाएगा और इच्छा चेंज हो जाएगी। क्योंकि अभी इच्छा है भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की, इसलिए अपराध होता है, लेकिन जैसे जैसे भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हृदय के अंदर जो इच्छा है वो परिवर्तित हो जाएगी, वो इच्छा भौतिक वस्तुओं की ना रहकर केवल भगवान की हो जाएगी। और यही अनुवाद ध्यान की परिक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते हुए मुखमंडल तक ले आइए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर, और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें भगवान के ध्यान के विषय में बताएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ध्यान हमेशा भगवान के साकार स्वरूप का होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया गया है पादादि यावत धती स्तंभ गदाभृत, के भगवान के चरण कमलों से ध्यान प्रारंभ करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि भगवान का एक साकार स्वरूप है जिसके चरण है, जिसके विभिन्न अंग हैं। भगवान के मुस्कुराते मुखमंडल तक लेकर आने का मतलब यही है कि भगवान कोई निराकार या शून्य नहीं है, भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी विधि निराकार या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है, ध्यान को तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए। वो बेवकूफ हैं जो सोचते हैं कि भगवान के शून्य या निराकार का ध्यान करना चाहिए। साफ साफ बताया गया है एक एक करके भगवान के प्रत्येक अंग का ध्यान, एक एक शुंगानि ध्यानो भावयेत, प्रत्येक अंग का ध्यान करना है। पादाद यावत हसितम अंगदावृत, चरणों से लेकर हंसते हुए मुखारविंद तक लाना है। तो इसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ध्यान तो परम भगवान के व्यक्तित्व पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चित आनंद विग्रह रूप हो। विराट विश्व रूप को जिसे हमने पहले पढ़ा कि जो पाताल लोक है वो भगवान के चरण है, उसके बाद अतल वितल भगवान की पिंडलियां हैं, प्रत्येक जितने भी नदियां हैं वो भगवान के रोम रगे हैं, जितने भी वृक्ष हैं वो भगवान के रोम हैं। इस तरह से प्रत्येक वस्तु पे भी जब देखना है तो भगवान के अंगों की कल्पना करनी है। ऐसा नहीं है कि भगवान कोई निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, ये सोचकर दान करना। तो यहाँ पर बताया गया कि भले ही भगवान के विराट स्वरूप को भी अगर ध्यान करना है तो भी व्यक्तित्व समझकर, और अगर भगवान के सच्चिदानंद विग्रह रूप का ध्यान करना है तो भी व्यक्तित्व का ध्यान करना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में अर्चा विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्कुराते हुए मुख तक आना चाहिए। भगवान विचारधारा के अनुसार, भागवत विचारधारा के अनुसार भगवान का रास नृत्य भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्कुराते हुए मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांग नाम लगाएं। श्रेष्ठकर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार हम धीरे धीरे अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं इत्यादि। जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं, ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल देखते हैं या भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं, तब हम उनके कार्यकलापों का रसास्वादन कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में रासलीला को दशम स्कंद में उद्धृत किया गया है, अध्याय 29 से लेकर 34 तक। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमलों पर हो या पिंडलियों पर, जांघों पर अथवा वक्षस्थल पर, जितना जितना हृदय एकाग्र होता है उतना ही वह शुद्ध होता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृष होती है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त हो जाता है। जितना जितना भगवान की ओर हृदय आकर्षित होगा, उतना उतना भौतिक वस्तुओं से वैराग्य। आज हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हृदय भौतिक वस्तुओं के आकर्षण को समाप्त कर ही नहीं पा रहा है। बुद्धि में केवल भौतिक वस्तुओं की इच्छा भरी होती है, मन केवल उन्हीं के लिए भटक रहा है प्रत्येक जन्म में, क्योंकि यही किया है, क्योंकि भगवान से दूर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिकृष होगी, अर्थात जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से उतना ही विरक्त होता जाता है। वर्तमान बुद्ध बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। कोई लोग बोलते हैं, क्यों भगवान का ध्यान करें, क्यों भगवान के ऊपर दृष्टि रखें, क्यों भगवान को स्मरण करें। जो जितना जितना भगवान का ध्यान करेगा, जितना जितना भगवान के दर्शन करेगा, जितना जितना भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करेंगे, जितना जितना भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, उतना उतना हम भौतिक वस्तुओं से विरक्त होते जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा दुख यही है, जीव का सबसे बड़ा कष्ट यही है कि भौतिक वस्तुओं में उसकी बुद्धि एकत्रित हो गई है। ऐसा लगता है कि बस भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही बुद्धि का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उसी के लिए चिंतन करती रहती है और मन उसी के लिए ही इच्छा करता रहता है। तो जैसे जैसे भगवान का ध्यान करते जाएंगे, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्र तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होता है। पता चलता है भक्ति में आप आगे बढ़े हो, ये पता कैसे चलेगा कि भौतिक इंद्र तृप्ति से विरक्ति हुई है या नहीं। अब तक यदि भौतिक वस्तुओं की इच्छा हृदय में बाकी है और हृदय हर वक्त भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है, तो इसका मतलब है अभी तक भगवान की भक्ति हृदय के अंदर एक उजागर नहीं हुई है, जागृत नहीं हुई है। तो जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे, जितना जितना हम इच्छा करेंगे, हम प्रयास करेंगे, उतना उतना हम आगे बढ़ेंगे। अतएव ध्यान का परम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये तो केवल शुद्ध भक्तों को अधिकार मिलता है, ये तो शुद्ध भक्तों का अधिकार है कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करें। जब तक अभी तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं, तब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त होते हैं, जिनकी जिनके जीवन का मकसद केवल इंद्रिय तृप्ति ही करना रह गया है, जो ये सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूपों या विष्णु अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए यह श्रेष्ठकर होगा कि भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जैसा कि अगले श्लोकों में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों या शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान करें, जबकि भक्तों को मंदिरों में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। चूंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते हैं, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं। जो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, जो विग्रह से प्रेम नहीं करते, जिन्हें भगवान के विग्रह पर श्रद्धा नहीं है, वो भला क्या भगवान की अर्चना करेंगे या भगवान के अर्चा विग्रह का ध्यान करेंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्रों में प्रत्येक जीव के बुद्धि के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार उसको ध्यान धारणा बताई जाती है। तो जो लोग को भगवान के विग्रह में विश्वास नहीं है या जो केवल इंद्र तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, उनको विग्रह सेवा की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बाकी जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान भले ही वो इतने शुद्ध नहीं हो, लेकिन जो विग्रह से प्रेम करना जानते हैं, जो विग्रह में कृष्ण को देखते हैं, उन्हें भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने की अनुमति होती है। उनको यह भगवान, जबकि भक्तों को मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान को स्नान कराएंगे, भगवान को अच्छे से वस्त्रों से श्रृंगार करेंगे, भगवान को दिव्य आभूषणों से श्रृंगार करेंगे, कभी कृष्ण के मोर मुकुट लगाएंगे तो कभी उनको नूपुर बनाएंगे, तो इस तरह से करते करते जो भौतिक आसक्ति हृदय के अंदर कई कई जन्मों से लगी हुई है, तो वो भगवान के अंदर लगने लगेगी। जितना जितना हम भगवान के प्रति आगे बढ़ेंगे, श्रद्धा और प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे, हम यहाँ से एक कदम बढ़ाएंगे तो कृष्ण वहाँ से 10 कदम बढ़ाएंगे। हमें भगवान की सेवा करने पर, भगवान की पवित्र नाम का जप करने में, भगवान की कथाओं को श्रवण करने में पूरा विश्वास होना चाहिए। कभी कभी मन में आता है कि हम कितने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, रोज रोज से एक कदम बढ़ा रहे हैं, तो भगवान भी वहां से 10 कदम बढ़ा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हृदय में क्यों अभी तक भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं हो रही है? क्यों अभी तक हृदय में कृष्ण के प्रति वो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्यों अभी तक भौतिक वस्तु हमें आकर्षित कर रही है? क्यों मन और बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हुए हैं? क्यों हमारे और कृष्ण के मध्य का जो सफर है, जो डिस्टेंस है, वो खत्म नहीं हो रहा है? तो उसका उत्तर यही है कि ये जो करोड़ों जन्मों से हम भगवान से दूर ही होते जा रहे हैं, दूर होते जाते 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 हमने बहुत बड़ी दूरी अपने और भगवान के मध्य में बना ली है। ये दूरी बहुत लंबी है, तो इसको पार करने के लिए भी थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन फिर भी हृदय के अंदर उत्साह कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो उत्साह के साथ प्रत्येक कदम को बढ़ाते हुए ये सोचो कि एक कदम जो है वो 11 कदम की दूरी को खत्म करेगा, एक कदम मेरा आगे बढ़ेगा तो 10 कदम कृष्ण मेरी ओर आएंगे, उत्साह के साथ। और निश्चय रखना चाहिए कि केवल मैं ही नहीं, वो भी मेरी ओर आ रहा है, वो जरूर हम एक न एक दिन हमारा मिलन होगा। और
कृष्ण मेरा सुहृद है, कृष्ण मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो अवश्य मुझे प्राप्त होगा, मैं अवश्य भौतिक संकटों से, भौतिक जगत से मुक्त होकर कृष्ण को प्राप्त करूंगा। हृदय के अंदर पूरा निश्चय होना चाहिए और यदि समय लग रहा है तो भी धैर्य रखना चाहिए, धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम पूरे उत्साह के साथ प्रयास करेंगे और निश्चय रखेंगे तो वो दिन अवश्य आएगा जब हमारा हृदय, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएंगी, भौतिक आसक्ति से विरक्ति हो जाएगी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी और हृदय भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।